ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदिशतारिणे वंशाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकंत राधाकंत नमास्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के चौथा स्कंद 31 अध्याय श्लोक संख्या 17 पाठ करेंगे। प्रचेताओं को नारद का उपदेश।
यथा नभस्य भ्रम प्रकाश यथा नभस्य भ्रतम प्रकाश भवन्ति भूपान भवन्त्यनुक्रमात् भवन्ति भूपान भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तमो एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तमो रजस्तम सत्वमिति प्रवाह रजस्तम सत्वमिति प्रवाह यथा नभस्य भ्रतमः प्रकाशा भवन्ति भूपान भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमो रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः यथा नभश्च भ्रतमः प्रकाशा भवन्ति भूपान भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमो रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाह बोलिए। यथा नभश्च भ्रतमः प्रकाशः भवन्ति भूपान भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तमो रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाह
कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की यथा जिस तरह नभसी आकाश में अभ्र बादल तमह अंधकार प्रकाशा तथा प्रकाश भवन्ति विद्यमान रहते हैं भूपा हे राजाओं न भवन्ति प्रकट नहीं होते अनुक्रमात् क्रम से एवं इस प्रकार परे परम ब्रह्मणि ब्रह्म में शक्तयो शक्तियां तू तब अमुः वे रजः रजोगुण तमः तमोगुण सत्वम् सत्वगुण इति इस प्रकार प्रवाह प्राकट्य प्रवाह। अनुवाद, हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है। इसी तरह सत्तो रजो तथा तमगुण परब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते हैं। तात्पर्य, अंधकार प्रकाश तथा बादल कभी प्रकट होते हैं तो कभी छिप जाते हैं, किंतु उनके छिप जाने पर भी उनकी शक्ति बनी रहती है। आकाश में हमें कभी बादल देखते हैं तो कभी वर्षा और कभी हिमपात। कभी हम रात देखते हैं तो कभी दिन और कभी प्रकाश देखते हैं तो कभी अंधकार। इन सब का अस्तित्व सूर्य के कारण है, किंतु सूर्य पर इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यद्यपि भगवान समग्र दृश्य जगत के मूल कारण हैं, किंतु उन पर भौतिक संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, भूमि राप नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यंग में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि जल अग्नि वायु शून्य मन बुद्धि तथा अहंकार, ये आठ मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियों का निर्माण करते हैं। यद्यपि भौतिक तत्व भगवान की शक्ति हैं, किंतु वे पृथक पृथक हैं। अतः भगवान पर भौतिक दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, जन्माद्यस्य जतः, इस संसार की सृष्टि पालन तथा संहार परमेश्वर के अस्तित्व के कारण है। फिर भी भौतिक तंत्रों में परिवर्तन का भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका संकेत प्रवाह शब्द से मिलता है। सूर्य सदैव तेजी से चमकता है, वह बादलों या अंधकार से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार भगवान सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में उपस्थित रहते हैं और भौतिक प्रसर्जन के से प्रभावित नहीं होते। ब्रह्म संहिता में पुष्टि करती है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्वकारण कारणम। श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा जाता है, भगवान है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक होता है। वे सबों के मूल स्रोत हैं, उनका अन्य स्रोत नहीं है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण हैं तो भी वे परम दिव्य हैं और उनका रूप सच्चिदानंद है। कृष्ण सभी वस्तुओं के आश्रय हैं और यही समस्त शास्त्रों का अभिमत है। इस दृश्य जगत का दूरस्थ कारण कृष्ण तथा निकटस्थ कारण प्रकृति है। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है कि प्रकृति को प्रत्येक वस्तु का कारण मानना वैसे ही है जैसे बकरी के गल स्तन को दूध का कारण मानना। यद्यपि भौतिक प्रकृति इस दृश्य जगत का निकटस्थ कारण है किंतु मूल कारण तो नारायण अथवा कृष्ण है। कुछ लोग मिट्टी के पात्र का कारण मिट्टी को मानते हैं। हम कुम्हार के चाक में प्रचुर मिट्टी देखते हैं जिससे अनेक पात्र बनाए जाते हैं जाने हैं। और यद्यपि अल्प ज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि पात्र का कारण चाक के ऊपर रखी मिट्टी है, किंतु जो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं वे कुम्हार को आदि कारण मानते हैं क्योंकि वही मिट्टी लाता है और चाक चलाता है। भले ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति में भौतिक प्रकृति सहायक कारक है के रूप में है हो, किंतु वह परम कारण नहीं है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, इस प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती हैं और समस्त चल तथा अचल प्राणियों को उत्पन्न करती है। परमेश्वर भौतिक शक्ति पर अपने दृष्टि डालते हैं और इस चितवन से प्रकृति के तीनों गुण उद्वेलित होते हैं, फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। निष्कर्ष यह हुआ कि प्रकृति इस भौतिक जगत का कारण नहीं है, परमेश्वर ही समस्त कारणों के कारण हैं। यथा नभस्यभ्रतम प्रकाशा भवन्ति भूपान भवन्त्यनुक्रमात् एवं परिब्रह्मणि शक्तयस्त्वमु रजस्तमस्सत्त्वमिति प्रभाः। हे राजाओं, प्रकाश में कभी बादल कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है। इसी तरह सत्तो रजो तथा तमोगुण परम ब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से इस श्लोक का तात्पर्य निर्णय किए हैं। जब भगवान के भक्त भगवान की गुण महिमा के कीर्तन करते हैं उसमें स्पष्टता दिखाई आती है, बल्कि जो लोग भगवान के भक्त नहीं होते फिर भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, भगवान की तात्विक विचार करते हैं, वह तत्व दूसरे जनों को श्रोताओं में भ्रम पैदा करता है। क्यों कि वो खुद भगवान के भक्त नहीं होने के कारण भगवत तत्व को सही रूप से निर्धारण करने का क्षमता नहीं रखते। इसी कारण से उनके द्वारा की गई व्याख्याएं श्रोताओं में भ्रम पैदा करता है, क्यों वो खुद भ्रमित हैं। कई ज्ञानी लोग होते हैं, उनको ज्ञान चर्चा करना बहुत पसंद होता है और ज्ञान का जो अंतिम उद्देश्य भगवान है कि उनकी ज्ञान चर्चा की लक्ष्य नहीं होता, लोगों के बीच बैठ के ज्ञान चर्चा करना उनकी उद्देश्य है। तो इसी कारण से लोग इस तत्व को नहीं समझते। लेकिन जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त इतने तत्वपूर्ण विचार को इतना सुंदर सरल भाषा से समझाया, कई भी पढ़े तो उसको समझ जाएगा। और अनुवाद करते समय प्रभुपाद जी का कितना स्पष्टता देखिए, जैसे अंत में कहते हैं सभी तरह इसी तरह सत्व रजो तथा तमगुण परम ब्रह्म के परब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कई जो ज्ञानी लोग होते हैं कभी कभी ऐसे कह देते हैं कि इसी तरह सत्व रजो तथा तमोगुण परब्रह्म में क्रमशः प्रकट होते हैं। लेकिन यहाँ जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि शक्ति रूप में प्रकट होते हैं, तो इतना कहने पर शक्ति रूप में प्रकट होते हैं, शक्ति रूप में, यही उसका मुख्य तात्पर्य बैठा हुआ है। क्यों कि भगवान भगवान है और भगवान की शक्ति भी है। यद्यपि श्रुति शास्त्र में कह गई है कि शक्ति शक्तिमतयोर अभेद, तो ये शक्ति और शक्तिमान अभेद हैं। तो कैसे अभेद हैं और कैसे भेद हैं उसको समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का शक्ति रूप में प्रकट होते हैं, स्वयं नहीं, उनकी शक्ति रूप में। भगवान तो स्वयं रूप में प्रकट होते हैं अपने भक्तों के सामने, भक्तों की भक्ति का पुष्टि करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों का पालन करने के लिए भगवान खुद आते हैं। लेकिन जब तक भगवान की जो संबंध इस जड़ सृष्टि के साथ होती है, उसमें भगवान साक्षात रूप में नहीं आते हैं। भगवान की शक्ति के रूप में वो प्रकट हो करके वो सब संपन्न करते हैं। कभी वे प्राकट होते हैं तो कभी लुप्त होते हैं। क्या ये सत्व रज और तम गुण, तो इसका व्याख्या करते हुए नारद ने बता रहे हैं, आप लोग सुनते आए हैं इस प्रसंग को, कि प्रचेताओं ने जब गृहस्थ बन गए थे तो बहुत दिन के बाद फिर उनको याद आया कि हमको अध्यात्म वस्तु का चर्चा करना चाहिए। तब अब आकर के नारद मुनि से जब मिले, उनसे वही कहे कि आप हमें उसी अध्यात्म तत्व का ज्ञान दीजिए जिससे पुनः वो परमार्थ तत्व का साक्षात्कार हो। और अभी नारद मुनि शुरू शुरू में भगवान के ऐश्वर्य तत्व का वर्णन कर रहे हैं, तो इससे हमें एक बात समझने आती है कि कभी नए लोगों को प्रचार किया जाता है भगवान की भगवत्ता के बारे में, भगवत तत्वों के बारे में, उनके वहाँ जाकर के भगवान की बहुत बड़े बड़े लीलाओं का वर्णन करने का कोई जरूरी नहीं है। कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि इन लोगों के सामने जा कर के हम भगवान के वही दिव्य प्रेममय लीलाओं का, वृंदावन लीलाओं का वर्णन करें, कीर्तन करें, तो ये भगवान को समझ जाएंगे। भगवान को समझना हो तो भगवान को क्रम से समझना चाहिए। तो भगवान की ऐश्वर्य तत्व ईश्वरता, भगवान की ऐश्वर्य कितना महान है। जैसे एक भौतिक उदाहरण हमें ले सकते हैं, कभी एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के पास बहुत बड़े धनी व्यक्ति का परिचय देता है, तो वहाँ जाकर के पहले वो धनी व्यक्ति अपना परिवार वालों से, अपने घनिष्ठ बंधुओं से मिलते समय कैसे व्यवहार करते हैं वो परिचय से उनकी परिचय नहीं देते। कहते हैं राम बाबू उस गांव के हैं, उनकी इतने ज़मीन है, इतने नौकर हैं, इनकी इतना फैक्ट्रियां हैं, ऐसे ऐसे उनकी कितना वैभव है, वो वैभव जब बोलते हैं तो व्यक्ति ऑटोमेटिक उनसे आकृष्ट हो जाता है। अगर यह नहीं कह करके कहते कि वो अपने परिवार को लेकर के इसे जाते हैं, इसे इसे अपने अपने जो संबंध करते हैं, तो उसमें उनकी इतना आकर्षण नहीं होता। तो उस हिसाब से अगर भगवान को समझना है या भगवान को भगवान के रूप में किसी दूसरों को जनए भक्तों को देना है, तो शुरू शुरू में भगवान की ऐश्वर्य तत्व का वर्णन करना यह जरूरी है, जो कि इस श्लोक में अभी चालू हुआ है। कितने श्लोक से पहले अभी अभी चालू किए हैं नारद मुनि। तो शुरू शुरू में भगवान की भगवत तत्वों का निर्णय कर रहे हैं। आज के श्लोक में बहुत तात्विक पूर्ण आलोचना उन्होंने कर रहे हैं। कहते हैं यथा नभस्य बृहत्तम प्रकाशा, नभ में आकाश में ये क्रम से तमह अंधकार और बादल तथा प्रकाश का प्रकाश होता है। कैसे होता है? सूर्य के कारण। सूर्य जब उदित होते हैं तब बादल तम अंधकार ये नाश हो जाता है, तो प्रकाश आता है। और जब भगवान सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं अस्ताचल पर्वत पर, तब इस संसार में अंधकार छा जाती है। और कभी कभी सूर्य प्रकट रहते हैं, फिर बादल जब दृष्टा की दृष्टि शक्ति को आच्छादित कर देते हैं, तो वो समझता है कि अभी सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है, सूर्य ढक गए हैं, इसे समझता है। वो अज्ञानी पुरुष है, उनमें ज्ञान नहीं होने के कारण वो समझता है कि बादल सूर्य को ढक दिया है। बादल सूर्य को ढकने के लिए बादल में क्षमता नहीं है, बादल इतना कर सकता है, हमारी जो दृष्टि शक्ति है वो सीमित है, ये सीमित दृष्टि शक्ति को बादल ढक देती है। तो उस हिसाब से तो ये भगवत तत्व को समझने के लिए सही दृष्टि रखना चाहिए। यहाँ जैसे कहते हैं सत्व रजत तमः, जैसे इस संसार में जो बहुत पाप करते हैं पाप पुरुष, वो तम गुण से प्रभावित रहते हैं, तो उनको प्रकाश दिखाई नहीं देता है। उस हिसाब से जो व्यक्ति रजगुण से प्रभावित हैं, जिनके मन रजगुण से फंसा हुआ है, वो सत्वगुण या भगवान की जो सत्वमय प्रकाश, उसको समझना उनके लिए भारी पड़ जाता है। जैसे यहाँ बहुत सुंदर से उदाहरण से समझाया जाता है कि कभी कभी ऐसे कहते हैं लोग कि सूर्य में कुहारा और अंधकार का, सूर्य अंधकार और कुहारा का कारण है, ऐसे लोग कहते हैं कभी कभी। क्यों कहते हैं? कि हाँ, एक्चुअली सूर्य स्वयं रूप से इसका कारण नहीं बनते हैं, सूर्य का जो रश्मि है, रश्मि के कारण कभी कभी, जैसे रश्मि नहीं है तो अंधकार दिखाई देती है, और जब तक रश्मि का तेज नहीं प्रकाश होता है तब तक तो कुहरा दिखाई जाती है, लेकिन जब तेज प्रकाश होता है भगवान सूर्य का, तो कुहारा बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। तो उस हिसाब से भगवान जो है, भगवान ये सत्व रज और तम गुण से प्रभावित नहीं होते, जैसे कुहारा या अंधकार सूर्य भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता। सूर्य में ये कुहार, सूर्य का स्थिति या सत्व कुहारा या अंधकार को नहीं कह सकते। उस हिसाब से भगवान की सत्व को समझने के लिए या भगवान को उसकी सत्ता सत्व रज और तमगुण में नहीं है, या सत्व रज तमगुण के द्वारा भगवान की सत्ता को समझ नहीं जा सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ समझा रहे हैं कि इस संसार में जो सृष्टि होती है, भगवान कहते हैं कि मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपहनम च अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान से सब कुछ सृष्टि होती है। तो यहाँ यह समझाया जाता है कि जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि भगवान एक्चुअली सबके कारण है, भगवान सबके कारण है और भगवान से सब कुछ आता है, लेकिन भगवान का कारण कहीं नहीं है और इसलिए वो अद्भुत कारण भी है। ये गजेंद्र जी अपनी स्तुति में कहते हैं तो भगवान नमः नमस्ते, वो भगवान प्रणाम करते कहते आप सकल इस अखिल जगत का कारण आप है, और कहते हैं लेकिन आपके कई कारण नहीं है, फिर भी आप सबका अद्भुत कारण है। इसी को कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। भगवान का कोई कारण नहीं है और भगवान का सबका कारण है, और ये भी कारण जो ये अद्भुत कारण है, मतलब सब लोग समझ नहीं पाते हैं भगवान के कारण की महिमा को। प्रभुपाद जी समझाते हैं, कहते हैं कि जैसे भगवान सबका कारण है और वो अद्भुत कारण है। अद्भुत कारण मतलब जैसे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान पूर्ण है और भगवान से सभी तत्व का प्रकाश होता है। भगवान खुद को भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित करते हैं, फिर भी वो पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं, इसलिए वो अद्भुत कारण है। तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जैसे कई व्यक्ति का बैंक में कई करोड़ों रुपया है और उससे वो मान लीजिए उसमें 1 करोड़ रुपया है उसके बैंक में, तो 1 करोड़ रुपया पूर्ण है ना, 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ में पूर्ण है, और उससे अगर वो विड्रॉ करते जाए, उससे पैसा लेते जाए, कुछ दिनों के बाद वो पैसा लीन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी पूर्णता समाप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान इतना अद्भुत है, अद्भुत कारण है कि उनमें से जितना अवतार आते हैं, जितना तत्वों की प्रकाश होता है, फिर भी भगवान पूर्ण रूप से पूर्ण तत्व के रूप से रहते हैं, तो इसीलिए वो अद्भुत कारण है। हाँ, तो जैसे और एक भी उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे घड़ा, मृणमय घड़ा जो है, जो मिट्टी से बनता है, घड़ा की जो कारण है वो मिट्टी है। घड़ा को फोड़ा जाए तो उसमें क्या निकलेगा, मृत तत्व निकलेगा, मृत्तिका, मृत तत्व। और जब घड़ा नहीं बना था तो वो मिट्टी रूप से था, घड़ा बन गया था, घड़ा में भी वो मिट्टी रूप में है, और घड़ा जब नष्ट हो जाएगा वो फिर मिट्टी रूप में ही रहेगा। तो उस हिसाब से ये सारी शक्तियाँ भगवान की है, और भगवान के द्वारा ये सृष्टि रूप में प्रकाशित होते हैं तत्व के रूप में, और फिर नष्ट होने पर भी शक्ति के रूप में भगवान में लीन हो जाते हैं। तो यही है सत्व रजतम रजतम सत्वमिति प्रवाह। ये संसार में ये गुणमय संसार है, सत्व रज और तम तीन गुणों से ये संसार बनाया गया है। जो कुछ आप देखते हैं ये तीनों गुणों का प्रकाश है, और भगवान से इसे प्रवाह आता है और भगवान में लीन हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि मिट्टी से घड़ा बनता है, और घड़ा जब नष्ट हो जाता है फिर वो जा करके मृद तत्व में वह घड़ा का मिट्टी मिल जाता है। उस हिसाब से सत्व रज तम रूपी जो शक्ति का प्रकाश संसार में दिखाई जाता है, वो जब सृष्टि का अंत में विनाश में ये भी जा करके भगवान की उसी शक्ति तत्व में प्रकाश हो जाता है। ये है सृष्टि का प्रवाह। लेकिन जो मूढ़ मूर्ख है, जो भगवान को नहीं समझते हैं, भगवान की शक्ति तत्वों को नहीं समझते हैं, उनकी कहना है कि भगवान सृष्टि के रूप में प्रकाशित हो गए कि भगवान के अस्तित्व कुछ नहीं है, जगत रूप में भगवान परिणाम हो गए हैं, परिणामवादी लोग कहते हैं। भगवान परिणाम होते हैं भी तो भगवान में कोई विकृति नहीं आती है, कैसे समझा जा सकता है कि भगवान की विकार है? ये भी हम समझते परिमाणवादियों ने, परिणामवादी जो तत्व का आलोचना करते हैं, उनकी कहना है कि भगवान परिणाम हो करके संसार जगत के रूप में प्रकाशित हुए हैं तो भगवान का अस्तित्व नहीं है। ऐसे नहीं है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे मणि, मणि ये स्वर्ण के रूप में प्रकाशित हो, जैसे स्पर्श मणि लोहा में स्पर्श किया जाए तो ये बिना विकार प्राप्त हुए लोहा को स्वर्ण रूप में प्रकाशित कर देता है। तो ऐसे अगर एक जागतिक वस्तु जो मणि है वो बिना विकृत हो करके उससे स्वर्ण पैदा होता है, तो भगवान बिना विकृत हो करके इस चराचर सृष्टि विश्व को सृष्ट कर देते हैं तो इसमें क्या बड़ा बात है? भगवान तो महान है, भगवान वैसे अपनी शक्ति से सब करते हैं। जैसे यहाँ प्रभुपाद कहते हैं दृष्टि मात्र से भगवान चराचर का सृष्टि कर देते हैं। तो भगवान सब सृष्टि किए हैं, सभी तत्व भगवान से आया है, और भगवान भी इन तत्वों से अभिन्न है। जो भक्त है ये जब कहते हैं, वर्णन करते हैं कि भगवान और भगवान की शक्तियों में कोई भिन्नता नहीं है, तो जैसे हमने भिन्न भिन्न उदाहरण दे करके समझाया तो उस हिसाब से समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान शक्ति रूप में प्रकाशित हो गए मतलब भगवान की भगवत्ता का कोई लेस मात्र नहीं, गंध नहीं है, ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए। जो मायावादी लोग जो तत्व रूप से तत्व तो भगवान को नहीं समझते हैं, वो भगवान को इस रूप से देखते हैं। इसीलिए यहाँ जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की शक्ति के रूप में प्रकटित होते हैं, और कभी वे प्रकट होते हैं और तो कभी लुप्त होते हैं। इस हिसाब से यथा नभस्य प्रथम प्रकाशा, आकाश में जैसे तमह अंधकार बादल और प्रकाश कभी प्रकट होता है कभी लुप्त हो जाता है ये सूर्य के कारण, उस हिसाब से भगवान के कारण जो सत्व रज और तम का प्रकाश और उनके द्वारा जो सृष्टि वस्तुएं का प्रकाश होता है, और फिर वो जब नष्ट हो जाते हैं फिर वो जाकर के भगवान में लीन हो जाते हैं। एवं परे ब्रह्मणि शक्ति स्तमु अमु, इस अमु सत्व रज और तम ये सब क्या होता है? पर ब्रह्मणि भगवान में ये लीन होते हैं और फिर भी ये प्रकाश होते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से तात्पर्य में भी समझाया कि कैसे ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान सब कुछ का कारण है वह परम कारण है और उनका कोई कारण नहीं है और वो भी अद्भुत कारण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई प्रश्न है, कई मंतव्य है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।